मेरे अत्यंत आत्मीय युवा मित्रों नमस्कार। आज 25 अप्रैल 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं दीपक सिंह, आपका गांव है चंदौका, जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, और संजय साहू, आप हैं हैदराबाद तेलंगाना से। मित्रों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं कल के ही विषय को आगे बढ़ाना चाहूंगा और अगर आपने कल का डेली ऑडियो लेक्चर सुना हो तो कल हम लोग ईरान पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसके बारे में बात की थी और उसी के सेकेंड पार्ट पर मैं आज बातचीत करूंगा। लेकिन एक बात इससे पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपने कल का डेली ऑडियो लेक्चर नहीं सुना है तो प्लीज इसे सुनने से पहले उसे जरूर सुन लें, तब जाकर के मेरी बात को आप बहुत अच्छे तरीके से और सही तरीके से, अच्छे तरीके से भी छोड़िए, सही तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग मुख्य विषय पर आए, आइए कुछ जो दूसरी खबरें हैं जो थोड़ी सी मुझे महत्वपूर्ण मालूम पड़ रही हैं उन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं। मित्रों, अखबार में आपने पढ़ा होगा कि जो इंडोनेशिया है उसने रामायण की थीम पर डाक टिकट जारी किया है, रामायण की थीम पर, और उसमें उन्होंने लिया है कि जब सीता का अपहरण करके रावण ले जा रहा था तो सीता को बचाने के लिए जो जटायु है, आपने कथा सुनी होगी कि बहादुरी के साथ रावण का मुकाबला करता है, उस दृश्य को उन्होंने लिया है और खासकर यह डाक टिकट जारी किया गया है। दोनों देशों के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसके 70 साल पूरे हुए हैं। अब आप देखें कि यहां तक कि मैं दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के साथ ही साथ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से कुछ और आपके दिमाग में बातें डालना चाहूंगा ताकि आप थोड़ी सतर्कता के साथ इन चीजों की तैयारियां कर सकें। जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया, बहुत सिंपल तरीके से पूछा गया कि निम्न में से किस देश ने रामायण की थीम पर अपने यहां डाक टिकट जारी किया है या राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया है, इस तरह से कुछ भी प्रश्न बनाया जा सकता है, लेकिन थीम यही होगा डाक टिकट जारी करना। अब आप देखिए कि जो ऑप्शन देंगे, जो विकल्प देते हैं, उनके पीछे उनकी मंशा क्या होती है। अब देखिए, दूसरे देशों की बात कर रहे हैं वो और रामायण की बात कर रहे हैं, तो जो इसमें अल्टरनेटिव्स दिए जाएंगे, जो विकल्प दिए जाएंगे, वो इस तरह के दिए जाएंगे जो आपको भ्रम में डाल सके। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कंबोडिया दे दिया गया एक, तो आप देखिए इंडोनेशिया कंबोडिया बोलने में कहीं एक जैसा लगता है, फिर कंबोडिया में तो बहुत बड़ा मंदिर भी है, आपको मालूम है बोरबुदुर का हिंदुओं का बहुत बड़ा मंदिर है, तो आपको लगेगा यार कंबोडिया में तो हिंदुओं का बहुत बड़ा मंदिर है तो कंबोडिया हो सकता है क्योंकि ये तो हिंदू से संबंधित है रामायण। फिर आपको दूसरा दे देगा वो थाईलैंड, थाईलैंड में जो बैंकॉक राजधानी है वहां से लगभग 100-150 किलोमीटर पर एक नगर ही उन्होंने बसाया है जिसका नाम ही अयोध्या, उसका नाम ही अयोध्या है। वहां आपको बहुत से रामायण पर आधारित चित्र दीवारों पर अंकित किए हुए मिलेंगे, तो आपको थाईलैंड दे देंगे। और चलिए एक सरल सा दे देंगे श्रीलंका, श्रीलंका के साथ हमारे राजनयिक संबंध भी बहुत पुराने हैं और रामायण का तो सीधे संबंध श्रीलंका से है भी, रामायण की कथा का, तो आपको श्रीलंका दे देंगे और एक इंडोनेशिया दे देंगे, तो इस तरह से चार आपको विकल्प दे देंगे। अगर आपने इसे ठीक से पढ़ा नहीं है, इसे नोट नहीं कर लिया है और बीच बीच में दोहराया नहीं है तो मान करके चलिए कि आप भ्रमित हो जाएंगे। अगर आपने एक बार पढ़ भी लिया, जैसे आज आपने मेरी बात सुन ली या आज आपने मेरी बात नहीं भी सुनी, अखबार में पढ़ लिया इंडोनेशिया, ठीक है यार इंडोनेशिया ने जारी किया है, दिमाग में रहेगा, इसमें कौन सी याद करने की और समझने की बात है, ठीक है हो गया। लेकिन याद रखिए कि आपके एग्जामिनेशन में जो नेक्स्ट ईयर सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन होगा उसमें 13 महीने की देरी है, 13 महीने के बाद दिमाग में वो चीजें उतनी स्पष्ट नहीं रहेंगी। तो मित्रों, जब भी आपको इस तरह की कोई इंपॉर्टेंट बात बताई जाती है तो आप इस तरीके से थोड़ी उसकी घेराबंदी करके और फिर वहां से तथ्यों को समझने और उसको सही तरीके से निकालने की कोशिश करें। जैसे कि एक फुटबॉल का खिलाड़ी जब उसके पास फुटबॉल होती है, 4-5 लोग उसे घेर लेते हैं तो बड़ी चालाकी के साथ इधर उधर छका करके वो बॉल को निकाल ले जाता है, तब वो तथ्य हमारे दिमाग में बहुत मजबूती के साथ उपस्थित रहते हैं। इसी तरह से एक और खबर है और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, और वो है कि मलेरिया जो बीमारी है उस पर टीका लॉन्च किया गया है, वैक्सीनेशन लॉन्च किया गया है, वैक्सीन लॉन्च किया गया है। और इसका नाम है, ध्यान से सुनिएगा ये, बल्कि नोट करने की बात है, क्योंकि सिविल सर्विस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी पूछ लिए जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये जो वैक्सीन है इसका नाम है RTS, कॉमा या लिखने की बात नहीं है, निशान लगा दीजिए, RTS, ये इसका नाम रखा गया, मतलब ये दुनिया का पहला टीका है जो मलेरिया पर बना है। और एक तथ्य आपको और भी याद रखना है कि अफ्रीका का एक देश है मलावी, वहां यह लॉन्च किया गया है, ये तथ्य आपको मालूम होने चाहिए। और ये 5 महीने से लेकर के 2 साल तक के बच्चों में लगाया जाएगा, बच्चों को लगाया जाएगा, और इससे इन बच्चों की जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो प्रतिरोधक उनका तंत्र है पूरा का पूरा, वह मजबूत होगा। तो ये क्या काम करेगा ये भी आपको जानकारी हो गई। बाद में इसे दूसरे 2 और देशों में, ये भी अफ्रीका के ही देश है, वहां लॉन्च किया जाएगा, और ये दो देश हैं, घाना और केन्या। तो देखिए अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या बातें हुई जो आपको दिमाग में रखनी है। पहली बात तो है कि मलावी में लॉन्च किया गया है, दूसरा यह है कि इसका नाम RTS है, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यह केवल 5 महीने से लेकर के 2 साल तक के बच्चों को ही लगाया जाएगा, और नेक्स्ट है कि इससे बच्चों का जो प्रतिरोधक तंत्र है वह मजबूत होगा। ये कुछ फैक्ट हैं, आप अगर इतना जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर अगर आपको उलझाने की इधर उधर से बहुत सी कोशिशें की भी गई तब भी आप बड़े आराम से अपना रास्ता फट से निकाल लेंगे। एक छोटी सी खबर और भी है मित्रों, कुछ समय पहले आपने एक खबर सुनी थी कि जो गोलान की पहाड़ियां हैं जिसको लेकर के लगातार सीरिया और इसराइल के बीच में विवाद बना हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये विवादास्पद ही है, उस गोलान की पहाड़ियों को ये इसराइल का ही है, यह मान्यता हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी ने दे दी है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दे दी है। तो इसको लेकर के पूरी दुनिया में एक हलचल भी है और दुनिया के देशों ने इसका विरोध भी किया है कि अमेरिका कौन होता है इस तरह से मान्यता देने वाला। अब बट नेचुरल है कि बेंजामिन जो वहां के राष्ट्रपति हैं नेतन्याहू, आपको मालूम है कि कुछ दिनों पहले की ही तो बात है, वो फिर से चुनाव जीत गए हैं, तो उन्होंने अब ये घोषणा की है कि उसी गोलान पहाड़ी पर एक बस्ती है, एक गांव है कह लीजिए जिसका नाम ही गोलान है, तो वह उस पहाड़ी का नाम अब अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर रखने जा रहे हैं, सॉरी पहाड़ी का नाम नहीं, बस्ती का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर रखने जा रहे हैं। तो मित्रों ये 3 जो थी छोटी छोटी खबरें थी जो आपके प्री एग्जामिनेशन से ज्यादा संबंध रखती हैं। आइए अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं। कल मैंने कुछ पॉइंट्स के बारे में आपसे बातें की थी कि ईरान पर अमेरिका ने क्यों प्रतिबंध लगाया है और इसके कारण कैसे पूरी दुनिया 2 गुटों में बट गई है, यहां तक हम लोगों ने चर्चा की है। अब हम देखते हैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर में कि इसका भारत पर सीधे सीधे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आज मैं आपको हिंदुस्तान अखबार का एक आर्टिकल मित्रों प्रोवाइड कर रहा हूं और उसका सीधा टाइटल ही है ईरान पर पाबंदी और भारत की नई मुश्किलें, राइट। जैसे मान लीजिए एक आर्टिकल है, जब आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो कभी भी यह समझने की भूल मत कीजिएगा कि इससे आपका यह शीर्षक कंप्लीट हो गया, मतलब जो भी मटेरियल आपको चाहिए था वो मिल गया, नॉट एट ऑल। इसमें आपको मुश्किल से 2-3 पॉइंट्स ही मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। आपको क्यों कहा जाता है कि आप लगातार न्यूज सुनते रहिए, अखबार पढ़ते रहिए, केवल पढ़ने की बात नहीं है, आपको उसमें से अपने लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक चुन करके कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, फिर लगातार नोट करते चले जाना है और इस तरह से एक कंप्लीट नोट बनाना है, तब जाकर के आपकी चीजें दूसरों से भिन्न हो पाएंगी। अगर आप किसी एक ही आर्टिकल पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे तो चीजें तो आपको मिलेंगी लेकिन पूरी नहीं मिलेंगी, वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है। देखिए जो आर्टिकल लिखने वाला है उसने आपके सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल नहीं लिखा है, उसने एक आइडिया चुना है अपने लिए और उस आइडिया को प्रूफ कर रहा है, लेकिन आपको तो उसे कंप्लीट बनाना है। तो अब मैं जो बातें कहने जा रहा हूं ये एक तरफ है और आप उस आर्टिकल को पढ़िएगा वो एक तरफ है, और फिर दोनों को आप कंपेयर कीजिएगा तब आपको पता लगेगा कि नहीं, अखबार केवल आपकी मदद करते हैं, सहायक है, वो पूरी तरह से आपकी मेहनत जो होनी चाहिए उसको रिप्लेस नहीं करते हैं, वो आपके लिए कुछ चीजें प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप देखें कि ईरान पर जो ये प्रतिबंध लगाया गया है, भारत पर इसके जो प्रभाव होंगे उसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं, एक तो राजनीतिक प्रभाव और दूसरा हम कहेंगे आर्थिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव के अंतर्गत क्या होगा कि देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि अब हम ईरान के साथ क्या करें, अगर हम तेल खरीदना बंद कर देते हैं अमेरिका के प्रतिबंध को मानते हुए तो हम, हो सकता है कि मध्य पूर्व में हमारा जो बड़ा एक विश्वसनीय जो दोस्त है और तेल आपूर्ति कर रहा है उसे हम खो दें, उसके मन में कहीं ना कहीं खटास तो आएगी। और हमारे साथ मुश्किल यह है कि हम अमेरिका की बात को अस्वीकार भी नहीं कर सकते, और उसका कारण यह है कि आपको मालूम है कि दुनिया का जो व्यापार है, ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, वो डॉलर में होता है, और ये जो डॉलर का पूरा जो रोटेशन होता है वर्ल्ड लेवल पर, वो अमेरिका के बैंक चैनल से होता है। और उसने सीधे कह दिया है कि जो उसके प्रतिबंधों को नहीं मानेगा, ईरान के साथ व्यापार जारी रखेगा, उसे जो अमेरिकी बैंक चैनल है उसके थ्रू रूट करने का अवसर नहीं दिया जाएगा, बंद कर देगा। तो फिर आपका इंटरनेशनल मार्केट बंद हो जाएगा, व्यापार बंद हो जाएगा, ट्रेड। तो इसका मतलब है कि आप मानने के लिए बाध्य हैं। और मध्य पूर्व या कह लीजिए कि जो पश्चिम एशिया भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो आप जानते हैं। चाबहार बंदरगाह वहां भारत डेवलप कर रहा है ईरान का, हालांकि एक अच्छी बात है कि अमेरिका ने कहा है कि नहीं नहीं उस पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में तो खटास आ ही जाती है, ये एक प्रभाव हो सकता है। दूसरा आप देखिए कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक संप्रभुता पर भी हमला है भाई, कि हम किससे व्यापार करें किससे नहीं करें यह हमारा निर्णय होना चाहिए, किसी दूसरे देश का नहीं। तो हमारी कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक सॉवरेंटी है उसको भी ये बाधित कर रहा है। तीसरा आप एक ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि हो सकता है कि अब ये जो पश्चिम एशिया है, मध्य पूर्व एशिया है, यहां अब फिर से एक नया संघर्ष शुरू हो जाए। सीरिया इराक का भी थोड़ा सा थमा है, नया संघर्ष शुरू हो जाए क्योंकि पूरा का पूरा क्रूड ऑयल वाला एरिया है, और अगर ये संघर्ष शुरू हो गया तो भारत का उस पर इंपैक्ट तो पड़ना ही पड़ना है। तो ये तीन चार पॉइंट्स आप पॉलिटिकली ले सकते हैं। इकोनॉमिकली तो देखिए बताने के लिए आपके पास बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हम लोगों ने कुछ बातें भी की है। सबसे बड़ा संकट यही होगा कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल के रेट बढ़े, और बढ़ेंगे ही, तो भारत को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए अगर इंटरनेशनल मार्केट में, एक आपको बहुत अच्छा आंकड़ा बता रहा हूं और ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल का रेट $1 बढ़ता है, $1, तो भारत को उसके वजह से 11,000 करोड़ रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं, 11,000 करोड़ रुपए। अब सीधी सी बात है कि जैसे ही तेल के दाम बढ़ेंगे, चलिए हमारा राजकोषीय घाटा जो चालू खाता है उसका घाटा बढ़ जाएगा, ठीक है। जब घाटा बढ़ जाएगा तो अब उसके दूसरे इफेक्ट होते हैं, चूंकि अब समय नहीं है तो उसको हम लेके चले, वो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, अगर आप उसे जानेंगे तो वहां यहां आप ऐड कर सकते हैं। अब देखिए जब पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ेगी तो उसका प्रभाव भारत की सारी चीजों पर पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, ऊर्जा उसी का आधार है, ऊर्जा की कीमत बढ़ जाएगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। जब महंगाई बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है कि अब उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब आप फिर से करते चले जाइए। जब महंगाई बढ़ जाएगी तो फिर रिजर्व बैंक को अपनी जो मौद्रिक नीति है उस पर भी फिर से विचार करना पड़ेगा। महंगाई बढ़ जाएगी तो सरकार जो सब्सिडी देती है किसानों को और दूसरे लोगों को, वो सब्सिडी का उसका बिल भी बढ़ जाएगा, उसको और ज्यादा सब्सिडी देनी पड़ेगी। घरेलू गैस, डीजल, रसोई, ये सारी की सारी महंगी हो जाएंगी। तो इस तरह से कुछ चीजें आपको बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगी कि जो चीजें पेट्रोलियम पदार्थों पर आधारित है उनकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा, और सब पर ही होगा क्योंकि परिवहन तो सबसे बड़ा हिस्सा होता ही है वस्तुओं के उत्पादन और विपणन के लिए। तो भारत पर ये सारे इम्पैक्ट पड़ेंगे। अभी मैंने जल्दी जल्दी में आपको एक साथ उनके इम्पैक्ट बता दिए हैं, इन्हीं को आप 1, 2, 3, 4 करके कर सकते हैं, और इस तरह से फर्स्ट क्लास एक सेल्फ सफिशिएंट नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। फिर देखिए कि आप इस टॉपिक पर आपसे कोई कितना भी घुमा फिराकर प्रश्न क्यों ना करे, आप उसमें उलझेंगे नहीं, बस आपकी लिखने की शैली थोड़ी सी उनके पूछे गए प्रश्नों की शैली के अनुकूल बदल जाएगी, अदरवाइज मटेरियल तो यही होगा, कंटेंट यही होगा। तो दोस्तों यही मुझे लगता है कि सिविल सर्विस की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो मित्रों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और उनमें से एक दोस्त का नाम है सूर्यांश शुक्ला जो कानपुर से है। सूर्यांश आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।